दादा अपने छोटे भैया को मारना तो दूर, कभी भी डांटते भी नहीं, तुम तो हमें डांट रहे हो और मार भी दिया। उन्होंने खेल खेल में भी इस बात का ध्यान रखा कि हमारे बड़े जन छोटों के प्रति सम्मान का भाव रख के, विनय का भाव रख के अपना व्यवहार करते हैं। हमारे इन सब धर्मों का प्रभाव जो हम धारण करते हैं हमारे अपने कल्याण में तो निमित्त है ही, हमारे आसपास के परिवेश में भी उसका प्रभाव स्पष्ट देखने में आता है। यदि हम किसी के प्रति छल कपट का व्यवहार करते हैं, आलंबर और दिखावा करते हैं, तो ज्यादा छुपा नहीं रहता, वो प्रकट हो जाता है। हमारे भीतर जो सरलता का भाव है वो तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन हमारी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। हम बहुत सारे चेहरे लगा करके जीने के आदि हो जाते हैं। दिखावे का जीवन जीना, बनावटी जीवन जीना, औपचारिक जीवन जीना, ये सब माया कषाय से प्रेरित होकर के अपन करते हैं और अपने निजता या आर्ज और धर्म को अपने हाथ से नष्ट कर लेते हैं। सरलता तो हमारा स्वभाव है, पर हम जो मायाचारी छल कपट सीख लेते हैं वो हमारी वैभाविक विकृत अवस्था है। माया के कई अर्थ हैं। धन पैसे को भी माया कहते हैं। संसार के भौतिक सुखों की बहुत अधिक आकांक्षा होना, मृग तृष्णा को भी माया कहते हैं। भीतर में अगर ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्स है, उसे भी अपन माया कहते हैं। उससे रहित निर्ग्रंथ अवस्था ही श्रेष्ठ मानी गई है और बनावटीपन और दिखावे को तो अपन माया कहते ही हैं। और जो चीजें शाश्वत नहीं है, नष्ट हो जाने वाली है, क्षणभंगुर है, उन्हें भी हम माया कहते हैं। भाई, इस प्रकार हम अपने जीवन में इस माया कषाय को जीत करके अपने सरलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम चेहरे लगाने के आदि हो गए, हमें अपनी ये आदत छोड़नी पड़ेगी। जिससे जैसे में काम सटेगा वैसा चेहरा हम उसके सामने लगा लेते हैं। मंदिर में आए तो बढ़िया से धोती पंचा पीले रंग का और तिलक विलक लगाए हैं, ऐसे दिख रहे कि इनसे तो अलावा कोई धर्मात्मा है ही नहीं, अत्यंत धर्मात्मा है। लेकिन जब दुकान पर पांच पांच पैसे के लिए अपन अपनी ईमानदारी को छोड़ देते हैं, छल कपट करने लगते हैं, तो कहां चला जाता ये अपना चेहरा बदल लेते हैं अपन। दुकान पर दूसरा चेहरा, घर में दूसरे प्रकार का चेहरा यानी व्यवहार, और मंदिर में अत्यंत सज्जनता का चेहरा लगाकर हम अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। होना ये चाहिए कि इन सब अवस्थाओं में मेरे भीतर की सरलता ज्यों की त्यों बनी रहे। जहां जैसा व्यवहार करना है सो तो वैसा करेंगे, लेकिन उस व्यवहार के पीछे औपचारिकता ना हो करके सरलता और अनौपचारिकता हो, ऐसा हम अभ्यास कर सकते हैं। एक बार एक फोटोग्राफर था, तो उसने अपने संस्मरण में लिखा कि हमने अपने यहां पर फोटो खींचने के लिए विभिन्न प्रकार से इंतजाम किए और एक बोर्ड लगा दिया कि दूसरे की दृष्टि में जैसा हम दिखना चाहते हैं वैसा फोटो खिंचवाओगे तो 25 रुपए लगेंगे, और जैसे दूसरे की दृष्टि में है वैसा फोटो खिंचवाओगे तो 15 रुपए में खींच देंगे, और जैसे आप वास्तव में हो वैसे खिंचवाओ तो 5 रुपये लगे। उसने अपने संस्मरण में लिखा कि किसी ने 5 रुपए और 15 रुपए का फोटो नहीं खिंचवाया, सबने 25 रुपए वाला फोटो खिंचवाया कि मैं दुनिया की नजर में ऐसा दिखना चाहता हूं तो मेरा ऐसा ही फोटो खींचो। हम इस प्रकार आत्म प्रवंचना करके अपने को ही छल लेते हैं, अपने साथ की शल कपट कर लेते हैं। हमारी अपनी जैसी जितनी योग्यता है उसे हम वैसा ही प्रकट करें, उसे वैसा ही दिखाएं। हम अपनी योग्यता से ज्यादा प्रदर्शित कर देते हैं, दिखावा कर देते हैं, आडंबर कर लेते हैं, तो हमारी प्रामाणिकता, हमारी विश्वसनीयता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आदमी फिर विश्वास नहीं करता कि भैया जैसे अपन कहते हैं कि हाथी के दांत दिखावे की अलग हैं और खावे की अलग है। हमारी कथनी करनी में जब एक रूपता नहीं रहती, दिखावा आ जाता है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज के बीच में अपन को रहना हो, चाहे परिवार में हो, हम जहां पर भी इस आडंबर का आलंबन लेते हैं, दिखावे का आलंबन लेते हैं, वहां पर उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। उससे मिलने वाला जो लाभ है उससे हम वंचित हो जाते हैं और अपनी विश्वसनीयता खो बैठते हैं। एक बार दो लोग नदी किनारे घूमने के लिए गए तो वहां पर जीवन साथी ने इशारा किया कि देखो एक पैर पर कैसा बगुला खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है। सो दोनों ने वैसा दृश्य देख करके और अत्यंत श्रद्धा भाव से उसे तपस्वी जान करके प्रणाम निवेदित कर दिया, लेकिन क्षण भर ही गुजरा और जैसे ही मछली ऊपर आई और बगुले ने अपनी चोंच में उसको पकड़ दिया। अब उन दोनों ने जिनके प्रति अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया था वास्तविकता जान करके और उतनी ही अश्रद्धा उनके मन में हो गई, उनका विश्वास जाता रहा, व्यक्ति की प्रामाणिकता खंडित हो गई कि बगुला तपस्या नहीं कर रहा था, वो तो इस इंतजार में था कि मछली कैसे ऊपर आए और मैं अपना आहार ग्रहण करूं। ऐसे ही अपन भी जिस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उन धार्मिक अनुष्ठानों में जो दिखावा या आडंबर कर लेते हैं उससे व्यक्ति के भीतर उसकी विश्वसनीयता खत्म होती है और हमारे अपनी प्रामाणिकता पर चोट पहुंचती है। हमें अत्यंत सावधान होकर के अपने सारे अनुष्ठान सरल भाव से करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने सरलता के कई अर्थ लिखे हैं, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, उन्मुक्त हृदय, सादगी और भोलापन, ये सब बातें सरलता के साथ अपने जीवन में आ जाती हैं। देखें अपन कि हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है। हम थोड़ा सा बेईमानी का अवसर मिलता है तो कैसे जल्दी अपनी ईमानदारी को छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, हम ईमानदारी का न स्वयं व्यवहार करते हैं ना ही दूसरे को करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उसे भी बेईमानी करने के लिए अवसर प्रदान कर देते हैं। बाबा भारती का उदाहरण सबको मालूम। बाबा भारती का घोड़ा खड़क सिंह डाकू ने मांगा था और बाबा भारती को अत्यंत प्रेम होने से अपने घोड़े से उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। सो कोड़ी और अपंग का वेश बना करके बाबा भारती के घोड़े को चुरा लिया था, हड़प लिया था। तब बाबा भारती ने क्या कहा था कि देखो इस घटना का उल्लेख किसी से मत करना, तुम मेरा घोड़ा चुरा रहे हो उसे ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो खड़क सिंह ने कहा कि क्यों? बोले तुम इस घटना का उल्लेख करोगे तो लोगों का विश्वास ईमानदारी पर से उठ जाएगा, लोग दीन दुखी की सेवा और मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि दीन दुखी का वेश बना करके आपने ठग लिया है। कबीरदास ने लिखा, कबीरा आप ठगाइए पर मत ठगिए कोई, किसी और को ठगने से तो आप ठगिया सुख हो बजे पर ठगिया दुख हो। आप अगर ठगे भी जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आप दुखी ही हो, लेकिन आप अगर दूसरे को ठगते हैं तो जरूर मानिए कि एक ना एक दिन आपको उसका फल दुख के रूप में प्राप्त अवश्य होगा। ऐसा विचार करके अपने जीवन में भी ईमानदारी लाना चाहिए। किसी के ऊपर कोई विश्वास अपने ऊपर करे, अपने को ईमानदार माने, तो अपने को उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसे भी ईमानदारी की प्रेरणा मिले, उसका विश्वास मजबूत हो। एक और घटना आती है, पेड़ के ऊपर भाग करके एक व्यक्ति शेर के डर से चढ़ गया। वहां जाकर के पेड़ पर देखा तो वहां एक भालू बैठा था रीछ। अब वो बड़ा डरा कि मैं तो शेर से बच करके यहां आया, यहां पर तो रीछ बैठा हुआ। रीछ भी विपत्ति में था शेर की वजह से, वो भी पेड़ पर बैठा था। सो रीछ ने कहा कि डरो मत, मैं भी विपत्ति से बचने इस वृक्ष की शरण में आया हूं, तुम भी आए हो। सो तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं करूंगा। हम दोनों शेर से भयभीत हैं, जब शेर चला जाएगा सो अपन अपनी जान बचा करके वापस लौट जाएंगे। ठीक है, मनुष्य ने स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर के बाद दोनों को नींद आने लगी, तो दोनों ने सोचा कि देखो अपन दोनों सो जाएंगे और अगर नीचे गिर गए तो शेर तो पकड़ लेगा, तो ऐसा करो कि एक सो गए और एक जागता रहे। ठीक है भाई, तो पहले नंबर वीच सो गया मनुष्य, उसकी पहरेदारी चौकीदारी करते हुए जागा रहा, तो सिंह ने मनुष्य से कहा कि देख रीच तो सो रहा है, तू उसे धक्का दे दे तो मैं अपना आहार बना लूंगा और तुझे छोड़ दूंगा, फिर नहीं खाऊंगा। तो मनुष्य को लगा कि अपने बचने का अच्छा उपाय है पटक दो नीचे। सो उस सोते हुए रीच को धक्का देने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया रीच की नींद खुल गई, रीच समझ गया। मनुष्य को अत्यंत ज्ञानी हुई कि अब तो रीच मुझे छोड़ेगा नहीं, मैंने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन रीच समझदार था, उसने कहा कि नहीं भाई, तुम विश्राम करो, मैं जागता हूं, मेरे ऊपर विश्वास रखो, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। ऐसा विश्वास दिलाकर के अब की बार मनुष्य कि सोने की बारी थी से मनुष्य सो गए और रीच प्रवेदारी करने लगा। सो सिंह ने धीरे से रीच को समझाया कि देखो इतना कृतज्ञ है, तुम्हें पटक रहा था, अब मौका है कि सोया हुआ है, तुम धक्का दे दो सो इसको, हम अपना आहार बनाएंगे और लौट जाएंगे, तुम्हें बचा देंगे। तो रीच ने कहा कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तो जानवर हूं, मैं ऐसी बेईमानी करना नहीं जानता। इतनी बड़ी बात रीच ने अपनी ईमानदारी की कही। अपन अपने भीतर क्या इस तरह की, जो पशु भी थोड़ी सी ईमानदारी रखते हैं, क्या वैसी ईमानदारी अपने भीतर नहीं ला सकते हैं? अवश्य ला सकते हैं, हमें थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। हमारी आदत में अगर बेईमानी आ गई है तो कोई बात नहीं, उस आदत को धीरे धीरे हम अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से कम करके और अपने जो आत्मिक गुण हैं ईमानदारी और सरलता उसको प्रकट करने के लिए तैयार हो जाए। बहुत स्पष्टवादी जो सरल होगा वो स्पष्टवादी होगा, जो चीज जैसी है उसे क्षिपाएगा नहीं, दुराव और क्षिपाव उसके भीतर नहीं होगा। वो स्पष्ट ही सब चीजों के बारे में अत्यंत ट्रांसपेरेंसी उसके भीतर रहेगी, बाहर भीतर एक सार, जैसे मृगंक साधु अंदर भी और बाहर भी कोई ग्रंथि अर्थात परिग्रह रखना पसंद नहीं करता, ऐसे ही वह भी पारदर्शी अपने जीवन को बनाकर बहुत स्पष्ट वचन बोलेगा, अपना व्यवहार करेगा। वर्णी जी का उदाहरण तो इस स्पष्टवादिता और सरलता के लिए मैं कई बार दे चुका हूं। भैया एक बार बहुत भरी सभा में किसी व्यक्ति ने वर्णी जी से पूछा, वर्णी जी बूंदी खाते थे, सो किसी व्यक्ति ने उन्हीं से पूछ लिया कि काय वर्णी जी भिंडी भक्ष है कि अभक्ष्य? अब बताओ इतने जनों के सामने और ऐसा प्रश्न कर लिया, तो वर्णी जी भी बड़े सहज भाव से मुस्कुरा करके बोले कि भैया हमें तो भाव थे सो हम खाते हैं, और वर्णी जी खाते हैं इसका मतलब भिंडी अवश्य नहीं है, और अपनी कमजोरी भी बता दी साथ में कि मैं अभी छोड़ नहीं पा रहा हूं। ऐसा बहुत कम ही अपने जीवन में हो पाता है। अपन तो अपने दोषों को दूसरे के सामने प्रकट हो जाएंगे तो बहुत अनादर होगा, ऐसा विचार करके दोषों को प्रकट नहीं होने देते हैं और अपनी प्रशंसा ही लोगों के सम्मुख करते रहते हैं। उन्मुक्त हृदय यह भी सरल व्यक्ति के भीतर ही हो सकता है। गर्म दोषी से मिलना जिसको अपन कहते हैं, किसी से मिले और अगर बहुत हार्दिक होकर के बहुत अनौपचारिक होकर के मिलते हैं तो अपने भीतर की सरलता प्रकट होती है, वरना व्यक्ति समझ जाता है कि जे तो चेहरा लगा करके मिल रहे हैं, हार्दिक प्रसन्नता इनको नहीं है। लिखा है कि जहां कंचन भी बरसता हो लेकिन अगर कोई अपमान करता हो, नहीं बुलाया हो, तो उस घर में प्रवेश नहीं करना, लेकिन अगर कोई सहज रूप से और दाल रोटी भी देता है और प्रेम देता है तो उसके यहां पर बिना बुलाए भी चले जाना। व्यवहार में अपन पहले ऐसा करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन अब औपचारिकताएं ज्यादा आ गई। किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे अपने पारिवारिक संबंध में देख लो, चाहे सामाजिक संबंध में देख लो, चाहे अपने धार्मिक रिश्तों में देख लो, सबने भगवान के प्रति अपने मन में श्रद्धा का भाव है, सिर्फ वो भी औपचारिक हो जाता कई बार कि कन्ने हैं दर्शन सु कर लू, लेकिन जो हार्दिक प्रसन्नता होनी चाहिए वो प्रसन्नता नहीं हो पाती। यशपाल जी अपने जीवन का एक संस्मरण सुनाते हैं, अब तो नहीं रहे, उन्होंने सुनाया था कि वो गांधी जी से मिलने दिल्ली गए और अपने साथ में अपनी 4 वर्ष की छोटी सी बेटी को गोद में लिए गए। उसका भी बहुत मन था कि मैं बापू से मिलूं, पहचानते थे बापू से, वो भी जानती थी। 1000 लोग जो सत्याग्रही थे वो बापू के आगे पीछे चल रहे थे, बीच में भीड़ से घिरे हुए बापू चले जा रहे हैं। यशपाल जी अपनी बेटी को गोद में लिए रास्ते के किनारे, बहुत भीड़ है, सो चुपचाप खड़े हैं कि गांधी जी से तो मिलना संभव नहीं इतनी भीड़ में। लेकिन बापू का ध्यान भीड़ में खड़े हुए यशपाल और उनकी बेटी की तरफ चला गया। सारी भीड़ को चीर करके हटा करके वो यशपाल जी के पास आए और उस 4 वर्ष की बेटी को, ऐसा जैसे अपन बड़े लोग बच्चों को डरवाने के लिए और ऐसा चेहरा बना करके हो कर देते हंसाने के लिए, तो वैसा ही उतनी भीड़ में उतने लोगों के बीच में भी उस बेटी की प्रसन्नता के लिए उसने भी चेहरा दिया। वो खिलखिला करके हंस पड़ी, छोटी तो थी, लेकिन यशपाल जी ने लिखा कि इतने महान व्यक्ति के अंदर इतने सरल भाव मैंने बहुत कम लोगों के भीतर देखे हैं। इतने उन्मुक्त हृदय होकर के, अत्यंत हार्दिक होकर के कौन आज किससे मिलता है, क्योंकि भीतर में कहीं अगर सरलता होगी तो ही मिल पाएंगे। और सीधा साधा जीवन जीता है जो व्यक्ति, वही सरल हो सकता है। आज अपन देखें, अपन जाकर के अपने जीवन को अपने घर में कि कितना आडंबर और किस प्रकार का अपन ने अपने जीवन को पराधीन बना लिया है। छोटी छोटी सी चीजों के अपन आश्रित हो गए, अत्यंत सादगी पूर्वक सीधा साधा जीवन अपन नहीं जी पाते, और साथ ही भोलापन जैसा बच्चों में होता है वैसा बड़े होने पर, ज्ञान आने पर कहां चला जाता है, कहां सादगी चली गई, कहां भोलापन चला गया, क्योंकि हम तो ज्ञानवान हो गए, पढ़े लिखे हो गए, बड़े हो गए, ये भैया सब कछु हो जाओ मनो आदमी बने रहो। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुनिया भर के जितने हैं सब हो, लेकिन आप पहले आदमी हो, सो आदमियत बनी रहे, ये गुणवत्ता हमारे भीतर सरलता की बनी रहे, ये हमारा ध्यान हमेशा बना रहना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाऊं, कितनी भी संपत्तिवान हो जाऊं, मेरे भीतर जो गुणवत्ता है वो नष्ट नहीं हो, मेरे भीतर जो भोलापन है, इनोसेंट जिसको अपन बोलते हैं, जैसे बच्चों को अगर पिताजी किसी से मिलना पसंद नहीं करते और वो व्यक्ति दरवाजे पर आया है तो क्या कह देते पिताजी अपने बच्चे से कि जाओ के आओ कि पापा जी नहीं है, तो बेटा भी जा करके सीधा जी कह देता सामने वाले से कि पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी है नहीं है करें। अब उसको क्या मालूम कि कैसा छल कपट किया जाता है। अपन ने सिखाया उसको बचपन से कि ऐसा छल कपट करना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं ही सरलता का व्यवहार नहीं कर पाते। एक छोटा सा एक पागल व्यक्ति का उदाहरण है, वो ऐसे ही बाल बाल बिखेरे हुए फटे कपड़े पहने घूमता रहता था, घूरे पर से कचरे घर में से कागज बटोरता था, सामग्री उठाता रहता था, लोग उसको पागल समझते थे, चिढ़ाते रहते थे। एक दिन की बात है कि उसको कचरे में एक टूटा हुआ आईना मिल गया। आईने में उसने अपना चेहरा देखा तो चेहरा में तो दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, अच्छा ही नहीं है चेहरा। से उठा करके उसको दर्पण को वो घूरे में फेंक दिया, कहने तुम ऐसे हो सब डरे घूरे में, अब हद नहीं माने खेले बोले, इतना बोलापन कहां आ पाता अपने भीतर, इतनी सरलता अपने भीतर आ ही नहीं पाती कि हम जैसे हैं वैसे कहने में अपन को क्या आपत्ति है, लेकिन नहीं अपन ऊपर से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, सरल बनना अलग बात है, सरल होना अलग बात है, और सरल दिखाई पड़ना अलग बात है। सो आज वर्तमान में सरल बनने और सरल होने की चेष्टा अपन कमती करते हैं, सरल दिखने की चेष्टा ज्यादा करते हैं। सो अपने भीतर ये आर्य और धर्म आ नहीं पाता है। हमें विचार करना चाहिए कि हमें सरलता दिखानी थोड़ी है, हमें तो सरल होना है, सरल बनना है। अगर इस तरह का अपने भीतर भाव आ जावे तो अपने आचरण में ये आर्य और धर्म आए बिना नहीं रहेगा। अपन को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। कबीर दास के जीवन की एक छोटी सी घटना है। उनके भजन पूजन से परिवार का हिसाब किताब सब गड़बड़ा गया। आर्थिक रूप से भी अत्यंत विपन्न थे, लेकिन भगवान के भजन पूजन में बाल में छेद करके घुसा जाता है। सो पहली पहली बार तो करी थी, सो कमाल ने वैसे ही छेद करके भीतर घुसे और कहा, पिताजी तुम बाहर खड़े रहना, कोई अगर दिखाई पड़ जाए, आवाज वगैरह आ जाए तो हमें इशारा कर देने, सो हम भग आएंगे। ठीक है भाई, अब भीतर जाकर मैं सब सामान चुरा करके पोटली में बांध करके उसी छेद में से बाहर आ गया बेटा, और पोटली अपने सिर पर रख करके घर की तरफ चलने लगा। तो कबीर दास क्या कहते कि क्यों भाई, सामान तो उनके घर का ले चल रहे हैं, उनसे बताई कि नहीं बताई, मैं सुन परेशान नहीं हो रहे से, अब बताओ। तो उस कमाल ने कहा कि हो रही चोरी, ऐसे भी हो सके, इतनी सरलता मन के भीतर जिसको हो वो व्यक्ति पाप में प्रवृत्त कैसे हो पाएगा, ना वो चोरी कर सकता है और ना ही हिंसा इत्यादि या झूठ हो सकती उसके द्वारा, क्योंकि जीवन ही उसका सरल बन गया है, सरल हो गया है, सरलता का दिखावा उसने नहीं किया है। अपन को भी विचार करना चाहिए कि हम भी अपने जीवन को सरल बनाएं और सरल होने की कोशिश करें, और अपने जीवन में जो सरलता का दिखावा अपन करते हैं, विनय का दिखावा जो अपन करते हैं, उसको छोड़ें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह मग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिव्य दर्शन करने वाला है, जब जब विश्रामे छु पछु कर गाफिल नेत्रा में सोता हूँ, तब वह शिव के निष्कंठ
उन्होंने अपने ज्ञान से सोचा कि मल्लाह साथ में रहेगा तो उतना मजा नहीं आएगा, अपन तो खुद ही चप्पू चला करके नाव खेंगे, मजा आएगा। तो उन्होंने नाविक को समझाया कि देखो तुम हमसे पैसे ले लेना और हमें नाव दे दो, हम नाव में घूम करके तुम्हें वापस दे देंगे नाव। तो नाविक ने कहा कि भाई ठीक है अगर तुम लोग ऐसा कह रहे हो, पर हम ये कह देते हैं कि जरा संभल करके अपनी नाव खेना। अरे बोले इसमें क्या बात है, हम तो बहुत समझदार हैं, ये जो एक झगड़ा अपन लोगों के साथ लगा हुआ है अनादि काल से कि मैं तो सब चीजें जानता हूं, जरूरी नहीं है भैया कि हम संसार में जितनी चीजें हैं वो सब जानते हो, लेकिन क्या करें हमारा अहंकार हमारी कशाएं हमारा ज्ञान हमें प्रेरित करता है इस प्रकार का विचार करने के लिए। उन्होंने भी प्रेरित होकर के नाविक को जैसे तैसे समझा बुझा करके उससे नाव ले ली, चले साहब, नाव में बैठे, नाव में पतवार खेने के लिए भी कुछ युवाओं ने उत्साह से पतवार खेना शुरू की और खूब एंजॉय किया जितना वो कर सकते थे। लेकिन मजा ये था कि एंजॉय किस तरह से करना वर्तमान में इसकी भी बड़ी अज्ञानता है। सो उन्होंने खाने पीने की सामग्री रख रखी थी, खूब खाई और पी, आप समझ गए कि क्या खाया होगा और क्या पिया होगा, दो ही चीजें हैं भैया, खाने की और पीने की। पहले तो ऐसे ही कहा जाता था कि पी रहे हैं, कोई पानी पीने को पीना नहीं कहता था, है? अब एक तो वैसे ही मोह का नशा और दूसरे और ऊपर से नशा कर लिया तो बेभान हो गए, एक तो अज्ञान और दूसरा अगर कोई ज्ञान की बातें बताए तो उसे स्वीकार नहीं है तो और अधिक अज्ञान की तरफ बढ़ने का ही अवसर आएगा, या फिर ज्ञान की कुछ बातें सीख करके अपने आप को अज्ञानी मानने का भ्रम, यही है अपने दुख का कारण कि हम अज्ञानी तो हैं लेकिन ज्ञान की कुछ बातें दोहरा करके हम अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, और या फिर कोई अगर ज्ञान की बात करता है तो अपन को रुचिकर ही नहीं लगती अपने अज्ञान की वजह से। ये दोनों ही चीजें अपने संसार का कारण बन जाती हैं और अपन समझ नहीं पाते हैं कि इतना सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन मेरे जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं मिल रही, नहीं मिली, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में अपन ने कोई प्रयास नहीं किया, डायरेक्शन ही चूज नहीं की। सुबह जब थोड़ी सी रोशनी हुई सारी रात चप्पू चलाते रहे, नाव खेते रहे और सोचते रहे कि नाव के नदी में विहार करके मैंने बहुत आनंद ले लिया, जब थोड़ा सा उनका नशा उतरा सुबह की रोशनी में उन्हें दिखाई पड़ा कि किनारा तो यहीं पर है तो अपन नाव में ही बैठे किनारे पर ही घूमे कहां, अरे ये तो गड़बड़ हो गई। एक ने जाकर के किनारे पर कहा कि अरे अपन लोग ने तो भ्रम में ही चप्पू चलाते रहे पतवार चलाते रहे, क्या बात हुई इतना सब कुछ सारी रात हमने चप्पू चलाई फिर भी कहीं नहीं पहुंचे वहीं के वहीं। तो नाविक खड़ा हुआ वहीं पर मुस्कुरा रहा था कि हमारा क्या फर्क पड़ता, तुम ही ने कहा था इसलिए तुम अपनी जिस से गए ले आओ पैसा, है कि नहीं, हमें तो पैसे से मतलब। जब लोगों ने पूछा नाविक से कि भाई आखिर हुआ क्या इसमें, तुम्हारी कैसी नाव थी, हमने इतनी उसको चलाई लेकिन हम तो वहीं के वहीं खड़े। भैया गलती थोड़ी सी है कि नाव में जो किनारे पर रस्सी बंधी थी, जिससे नाव बंधी थी, वो तो तुमने खोली ही नहीं। अब बताओ तो कैसे नाव नदी में विहार करेगी। ऐसे ही खूब सारा अपने जीवन को अच्छा बनाने का उपाय कर लेते हैं लेकिन अपन संसार के भौतिक सुखों में अपने मन को बांधे रखते हैं। वो भी मिलता रहे और हमें आत्मा का सुख भी मिल जाए, जैसे चीटी महारानी अपनी सहेलियों से मिली, सो दूसरे ने बताई कि हम तो बहुत खुशी में हैं और शक्कर खा रहे, बहुत मीठा है। अच्छा, निमंत्रण दिया कि तुम भी पधारो, तो दूसरी वाली चीटी महारानी ने सोचा कि अरे का पता होते मिलो खावे के नहीं, भी नमक के बोरा में रहती, सो ने थोड़ा सा नमक अपने मुंह में रख लिया और फिर गई मेहमानी के लिए। सो वहां पर क्या स्वाद आया, शक्कर का आया कि नमक का। हम इसी तरह से विषय कषायों के सुख को भोगते हुए, उनमें ही रुचि रखते हुए, उनमें ही सच्चा सुख मानते हुए, और फिर अगर अपने जीवन को वास्तविक सुख के लिए लगावें, प्रयास करें, तो क्या मिलेगा। हम ऐसे बहुत सारे भ्रम, ऐसी अज्ञानता जिसके माध्यम से अपने जीवन को हम अच्छा बना ही नहीं सकते, अपने भीतर भरे हैं, रखे रहते हैं और इससे उससे सबसे उपाय पूछते रहते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। भैया आपसे भी कोई अगर पूछे अपने जीवन को अच्छा बनाने का तो आप ही बता देंगे, लेकिन अपने जीवन को अपना अच्छा बनाने के लिए दूसरे से पूछेंगे। अपनों मकान बनवाने हुए तो इंजीनियर से पूछें, वो दूसरे को बन रहा हो तो खुद ही इंजीनियर बन के उनको बताऊं लग के ऐसा नहीं ऐसा बनवाओ। अब देखो ये कितनी बड़ी अपनी अज्ञानता है, इसी वजह से अपन अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पा रहे, अपने जीवन में दुख है, हम ये स्वीकार नहीं कर पाते। वो दुख के कारण भी मेरे भीतर है ये तो और ही नहीं स्वीकार कर पाते, दुख के कारण कहीं बाहर हैं, हम इस भ्रम में जीते रहते हैं। न सुख कहीं बाहर है न दुख कहीं बाहर है, ये तो कर्माश्रित है। जब कर्म का उदय आता है तब सुख और दुख मुझे प्राप्त होते हैं, मैं उनको फील करता हूं कि अभी सुख का समय चल रहा है, अभी दुख का समय चल रहा है, लेकिन उस सुख दुख के एहसास के साथ अपन फलाने ने हमें सुख पहुंचाया ऐसा भाव रख लेते हैं और अपना हितैषी मान लेते हैं, और इस व्यक्ति ने तो मुझे दुख पहुंचाया ये तो मेरा शत्रु है, और ऐसे करके शत्रु और मित्रता के सैकड़ों संबंध बना लेते हैं। बताइए करते हैं ऐसे ही कि नहीं करते, और निरंतर इस अज्ञानता की वजह से और दुख पाते रहते हैं। हमें दुख भी सुख जैसा लगने लगता है, मजा तो ये है, अगर दुख वास्तव में दुख लगता होता तो छोड़ नहीं दिया होता अपन ने, दुख का कारण छोड़ दिया होता जिससे कि मुझे दुख मिल रहा है। हाथ में अगर गर्म चीज आ जावे तो विचार करने के लिए गोष्ठी बिठाते हैं कि जरा विचार करना है कि जी हाथ में जो चीज है वह कहां फेंके, फेंके कि नहीं फेंके, चार लोगों से पूछ लेवे कि संसार छोड़े कि न छोड़े। भैया अगर हाथ में गर्म चीज आई है तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हाथ छूट जाता है, चीज वहीं के वहीं गिर जाती है। क्यों? हमें खुद एहसास हो गया, किसी के घर में आग लगे और फिर भी वो घर का त्याग ना करे तो क्या समझेंगे कि भैया उसे एहसास नहीं है अभी अपने घर की आग का अपने जीवन की पीड़ा का अपन को स्वयं एहसास होगा तो उस पीड़ा से बचने के लिए अपन प्रयास करेंगे। लेकिन क्या करें, जेल में रहने वाला बहुत पुराना कैदी नए वाले कैदी को क्या मानता है। अब यहां आए होते ही रखो सामान, हम बहुत दिना से हैं भीतर, हम ही रहे थे, वो भी अपना वर्चस्व बनाने रखता है तो जेल में जानता है, लेकिन हम पुराने जेल में हैं, तुम अब यहां ही आए हो। अपन तो अनादिकाल से जेल में है, लेकिन ये एहसास अपने को नहीं हो पाता और अपन उसी में अहंकार कर लेते हैं कि मैं पुराना हूं। इस संसार में तो अपन सभी जीव अनादिकाल से हैं, सो सब पुराने ही हैं। अपने को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि इस संसार से अपन मुक्त हो सके। सो दुख से बचने का उपाय भी है, लेकिन जब तक डायग्नोस प्रॉपर ना हो तो ट्रीटमेंट कैसे होगा। हम पहले ये तो जान लें कि दुख का मेरे उपाय क्या है। सिर में दर्द होता है, रात में शायद ठीक से गर्दन टेढ़ी हो गई होगी सोने में, इसलिए सिर दर्द हो रहा, ऐसा सोच लेते हैं। या फिर और भी कोई उपाय, और भी कोई कारण अपन खोज लेते हैं कि शायद ठीक से पेट साफ नहीं हुआ इसलिए सिर दर्द हो रहा होगा, जरा डॉक्टर को दिखा दें। दुनिया भर के बाह्य कारण पर अपन विचार कर लेते हैं, लेकिन मेरे सिर में दर्द मेरे असाता कर्मों के उदय से है, ये ध्यान नहीं जाता। बताइए, उस असाता कर्म को कैसे दूर करूं, ये ध्यान नहीं जाने की वजह से अपन बाह्य कारणों में ही और उसका समाधान ढूंढते हैं। मंदिर छोड़ करके पहले नंबर धर्म ध्यान छोड़ करके और उन बाह्य कारणों के उपचार के लिए दौड़ते हैं, लेकिन भीतर तो धरा हुआ है असाता वेदनी। कितने भी बाह्य उपचार कर लें अपन, लेकिन जब तक असाता का उदय है कैसे वो उपचार कारगर होंगे, ऐसा विचार अपने भीतर नहीं आता। होना तो ये चाहिए कि अगर दुख मिला है मुझे तो उस दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है, किसी और की वजह से नहीं मिला है, मेरे ही भीतर है। मैं उस कर्म को काटने के लिए जो उपाय है वो करूं, किसी की कृपा से वो दूर नहीं होने वाला। भगवान महावीर स्वामी भी आ जाएं, जिनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है, जिनको हम मानते हैं, सो भैया वे भी अपने कर्म काट सकते हैं, दूसरे के कैसे काटें। उपाय बता सकते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के मार्ग पर चलो तो तुम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हो। हम सिर्फ उपाय बता सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बांधे कर्मों को हम नष्ट नहीं कर सकते। हमारी भी सामर्थ्य नहीं है, इतनी सामर्थ्य अवश्य है कि तुम्हें उपाय बता सकते जिस उपाय से हमने अपने कर्म काटे हैं। लेकिन अगर दुख मिलता है तो बाह्य कारणों पर अपना ध्यान चला जाता है और उसी को दोषी ठहरा करके अपन संक्लेशित होकर के और कर्म बंद कर लेते हैं। या कि किसी ने अगर उपकार किया अपना तो मेरे साता कर्म की वजह से उपकार हुआ है, लेकिन उसे ही हम उपकार मान करके, और जब कभी उसके द्वारा उपकार नहीं होता तो उसी के प्रति अपना मन कड़वा कर लेते हैं, क्योंकि अपेक्षा हो गई अपनी कि अब तो ये हमारी सुख में जो जो हमने सोचा है वो सब में सहयोग करेगा। भाई मेरे पुण्य का उदय होगा तो करेगा, उन्हें पुण्य का उदय होगा तो काय को करेगा, सगा भाई भी होगा तो नहीं करेगा। मेरे पुण्य के उदय से मुझे सुख दुख मिले हुए हैं, सुख मिला हुआ है, और पुण्य पाप के उदय से मुझे दुख की प्राप्ति हुई है। ना मुझे किसी और ने दुखी किया है, मैं समता भाव रख करके दूसरे के बारे में अपने परिणाम कलुषित ना करूं। और अगर मैं ये मानता हूं कि किसी के द्वारा मुझे सुख प्राप्त हुआ है तो ये मेरी मिथ्या धारणा है, मेरे साता कर्मों से प्राप्त हुआ है, सामने वाला निमित्तवश बना है, इसलिए मैं उसके उपकार को कभी भूलूंगा नहीं और ऐसा ही उपकार करने दूसरे के प्रति भी तत्पर रहूंगा, मैं भी दूसरे के सुखों में निमित्त बनने का प्रयास करूंगा, यही उसका उपकार है। ऐसा विचार आता नहीं, आता तो खोटा ही है। भैया एक बेटा था किसी के घर में और एक ही था, सो बड़ा प्रेम भी था लेकिन कई बार अधिक प्रेम भी खतरनाक हो जाता, बहुत अपेक्षाएं हो जाती। सो उसके पिताजी उस बेटे से बहुत सी अपेक्षाएं रखते थे और उनका सोच जो है वो नेगेटिव ही था। दृष्टि अगर ठीक ठीक ना हो, निर्मल ना हो, तो यही स्थिति बनती है। और जब वो बहुत अच्छे कपड़े पहन करके दुकान जाता तो कहते कि देखो हम कमा कमा के मरे जा रहे, भैया साहब ज्यादे बने घूम रहे, अब बताओ। और जब वो सुनकर के सोचता कि ठीक तो कह रहे पिताजी, इतना कमा के और हमें इतना बढ़िया खिला पिला रहे हैं, तो हमें ज्यादा हाई फाई नहीं रखना चाहिए, अपने सामान्य रूप से जीना चाहिए, सो कोनू डड़े हुई कपड़ा से उठा उठू गए वो ही पहन लो चले दुकान। तो दुकान पे अगर थोड़े खराब कपड़ा पहन के जाए तो क्या कहती, अबे कौन हम मर गए हैं, हम कमा रहे हैं, अबे अच्छे तो पहन लो हमारे सामने, तो अब बताओ नहीं मेरा जी ने वो मेरा जी, अच्छे पहनो तो तकलीफ है, बुरे पहनो तो तकलीफ है। भैया इस तरह का सोच ही अगर अपन रखेंगे तो अच्छे में भी अपन अच्छा क्या है ये नहीं देख पाएंगे और कभी भी उपाय अपने सुख का नहीं कर पाएंगे। सुख के उपाय अगर अपन करना चाहें तो पहला उपाय तो यही है कि अपनी अप्रोच पॉजिटिव हो, अपनी दृष्टि निर्मल हो, ठीक ठीक देख सकें, गलत ना देखें, गलत है वहां पर, क्योंकि हम में से कोई भी यहां पर अच्छे और बुरे के भाव से पृथक नहीं है। अच्छे भाव तो सिर्फ शुद्ध भाव तो भगवान के हैं, अरहंत और सिद्ध अवस्था में प्राप्त होने के बाद ही अपन को प्राप्त होंगे। अभी तो अपन अच्छाई और बुराई दोनों से समन्वित हैं, किसी के भीतर अच्छाइयां अधिक हैं, किसी के भीतर बुराइयां अधिक हैं, हमें क्या देखना है, हमें तो जो अच्छा है उसे ही देखना है। अगर ऐसी दृष्टि अपनी निर्मल हो जाए तो फिर अपने जीवन में कोई अपने को दुखी नहीं कर सकता, अपन तो हमेशा सुख में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो सुख के उपाय में पहला उपाय यही है और दूसरा है अनाशक्ति और तीसरा उपाय है आत्मविश्वास। ये तीनों चीजें अपने जीवन को अपन सुखी बना सकने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आशक्ति छोटी छोटी सी चीजों में है, सो भैया वहां से थोड़ी सी आशक्ति धर्म ध्यान में हो जाए, इतना सा काम करना है, थोड़ा सा समय मेरे आत्म कल्याण में भी मेरी आशक्ति हो, मेरा मन लगे, मेरी रुचि बने, ऐसा अपन निकाल लें। पंचेंद्रिय और मन के विषय तो मुझे आशक्त करते ही हैं, लेकिन कितनी बार उन सब के प्रति आशक्त होकर मैंने अपना संसार बढ़ाया है, अपने लिए ही दुख का इंतजाम किया है। एक सेठ जी के मन में आया कि हम सुख और शांति पाले में कहूं मिलत हो वे, तो अब उनको यही था कि कहीं मिलती होगी, सो ढूंढ ली अपन, ढूंढे अपन, सो ढूंढने निकले, सो ढूंढने निकले, सुनने सोची के रास्ता में कुछ थोड़ा बहुत तो चाहिए, कछू ने मिलो अगर तो खावे पीवे की सामान तो रख लो, सुनने खावे पीवे को सामान तो कहां कहां तक रखें, खराब हो जाए, सो रुपया पैसा भी रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सो हीरे जवाहरात एक छोटी सी पोटली में बांध करके पास में रख लें कि जब जरूरत पड़े सो यही अपन खर्चा कर दें और निकले सुख शांति पाने के लिए, ढूंढने के लिए। पोटली हाथ में और सुख शांति पाने निकले हैं, देखो विचार। सो सब में सबसे पूछे का भैया इतने सुख शांति देखी तुमने कहूं, सो सब गांव वाले के हैं कि भैया हम आए थे तो नैया, हम आए थे नीरज सुख शांति। तो सब में ढूंढते ढांढते एक गांव में पहुंचे, वहां गांव में एंटर होने लगे तो वहां पर पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठे थे। तो उनको लगा कि देखो गांव वाले से तो ये ज्यादा जानती होंगे, ये सब दुनिया में घूमे हैं, इनको मालूम ये कि कहां मिले, सो सीधे नहीं से पूछ ले, मैं होता ही चले अपन का को भटके। सो बाबा जी से जैसे ही पूछा कि बाबा जी सुख शांति कहां मिलेगी मुझे बताएं, आपको तो मालूम होगा। सो बाबा जी ने क्षण भर को सेठ जी की तरफ देखा और उनके बाजू में रखी थी पोटली, सो उठाई पोटली और दौड़ लगा दी। अब बड़े मुश्किल में सेठ जी कि हम तो सुख शांति पूछ रहे थे और इनने हमारी पोटली उठाई और चल दिया। सो जे भी भागे उनके पीछे, सो सेठ जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और साधु बाबा जी जो है पोटली हाथ में लिए हैं और पूरे गांव में चक्कर लगा रहे, सब में हुजूम जुड़ गया, सारी जनता देख रही है कि भाग रहे हैं, आगे आगे बाबा जी हैं, पीछे पीछे सेठ जी हैं, बाबा जी के हाथ में पोटली है। सो थोड़ी देर घूमते घामते भागते और बाबा जी आन करके पेड़ के नीचे फिर बैठ गए। सेठ जी बोले कि बाबा जी आपने बड़ा परेशान किया, आपने बड़ी अशांति करी, आप मेरी पोटली में तो आपसे इतने विनय से और पूछ रहा था कि सुख शांति कहां है, आपने मेरी पोटली उठाई और चल दिया। बोले नहीं, मैं तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा था कि अशांति और दुख का उपाय अपने साथ रख करके तुम सुख शांति चाहते हो और मेरे से पूछ रहे हो। तुम अपने हाथ में बताओ ये पोटली रख करके ही दुख उपाय दुख पा रहे हो, अशांति पा रहे हो, मेरे पीछे पीछे भागते रहे अशांत होकर संक्लेशित होकर, काहे के पीछे, मेरे पीछे नहीं इस पोटली के पीछे। अगर धर्म के पीछे सारे भौतिक सुखों को छोड़ करके तुम भागते तो वास्तव में तुम्हें सुख और शांति मिल जाती। अभी तो तुम धर्म भी करते हो तो सांसारिक सुख शांति पाने के लिए करते हो, लेकिन वास्तव में वो सुख शांति नहीं है, वो तो कर्माधीन है। अपने को ऐसा विचार करके भौतिक सुखों में सच्चा सुख है ऐसा ना मान करके उनका सिर्फ उपयोग करना चाहिए भैया। अनाशक्त भाव से भी उपयोग किया जा सकता है, आशक्त होकर के भी उपयोग किया जा सकता। सो अपन ने अनादि काल से अभी तक उपयोग आशक्त होकर के किया है, थोड़ा सा अभ्यास अपन अनाशक्त होकर के चीजों का, जो अपने काम में आती हैं आवश्यक हैं उतनी ही चीजों का उपयोग करके देखें। और तीसरी चीज अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करें, क्योंकि आत्मविश्वास से ही अपन अपने दुखों को दूर कर सकते हैं और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दुख को दूर करने का उपाय या सुख को प्राप्त करने का उपाय आत्मविश्वास ही है। आत्मविश्वास कैसे आता है? सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ श्रद्धा है जिसकी, जो भयभीत नहीं होता कि कोई है मेरे साथ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होगा, ऐसा जिसके भीतर एहसास है। श्रद्धा करती क्या है, समर्पण करता क्या है, ये एहसास तो कराता है कि मैं अकेला नहीं हूं। यहां हर व्यक्ति अपने आप को अकेला मानकर दीनहीन मान लेता है। सो भैया उपाय बता दिया कि कम से कम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति तो श्रद्धा रखो और अपने अकेलेपन में उनको ही मानो, साथ में उनकी ही शरण को स्वीकार करो, तो यही सुख का उपाय है और इसी से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। सच्चे देवगुरु शास्त्र तुम्हारे लिए कुछ करेंगे ऐसा नहीं है, तुम्हारी उनके प्रति जो श्रद्धा है उससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपन क्या मानते हैं महाराज, पिछी लगा दो पांव पिरा रहो, अब बताओ। तो पांव पिरा रहो तो भैया जो कोई पांव को इलाज करे ऊ के पास जाओ, महाराज जी थोड़ी इलाज करते। एक बार ऐसा हुआ, मड़िया जी के सामने ही मेडिकल कॉलेज है, सो मड़िया जी में आचार्य श्री का संचौरासी में संग रुका था, सो एक जने आए, हम वहीं बैठे थे, सो कह रहे महाराज सब इलाज करवा लो, पांव नहीं मिटाता है, बहुत तकलीफ है। सो आचार्य श्री सब सुनते रहे, चुपचाप मुस्कुराते रहे, और फिर जब वो चुप हो गए तो उनसे कहा कि आप गलत आ गए। अरे नहीं महाराज, हम तो सही जगह आए, आप ही के पास आने तो हमें। कहले नहीं, आप गलत आ गए, मेडिकल कॉलेज सामने है, इसका इलाज तो वही करेंगे। मैं तो सिर्फ जो आत्मा में विकार बैठे हुए हैं उनको कैसे दूर किया जाए ये बता सकते हैं, शरीर के विकारों को तो मेरे कर्मों के माध्यम से ही हुए हैं। जब मैं कर्म काटने का उपाय कर लूंगा तो बाकी जो आदि व्याधि हैं वो तो अपने आप ही शांत हो जाएंगी। अपन ऐसा विचार नहीं करते, अपने भीतर आत्मविश्वास नहीं हो पाता है कि मैं कर लूंगा। एक बात छोटी सी घटना है, बस इतना और सुना करके। भैया अपन ने 8 दिन तक खूब ज्ञान का अभ्यास किया, सुकाए खिलाने किया, इसलिए किया कि 4 लोगों को बता सकें कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे इतने नंबर आए हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने ज्ञान अर्जित किया है अपनी अनादिकालीन अज्ञानता को दूर करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। मैं अज्ञानता पूर्वक अविवेक पूर्वक जो काम करता था, अब ज्ञान के माध्यम से मेरे विवेक जागृत हो जाने से मेरी क्रियाओं में समीचीनता आ गई। ऐसा भाव अपन को रखना चाहिए, तभी अपना इतना अध्ययन। और बताओ, जो अपना सामायिक इत्यादि धर्म ध्यान कर रहे हैं, अपना स्वयं का कल्याण कर रहे हैं, वे आपके लिए कल्याण के लिए 4 बातें बता रहे, आपका कितना सौभाग्य है। आपने ज्ञान उनसे हासिल किया।